मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले एक दो इस बीच की घटनाओं को देख लेते हैं। अभी जब मंत्रिपरिषद का गठन किया गया तो आपने देखा कि हमारे जो आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। कुछ अन्य मंत्रियों को भी ड्रॉप किया गया, लेकिन मैं रविशंकर प्रसाद जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके ड्रॉप करने के पीछे अखबारों ने ये लिखा है कि अभी आईटी कानून को लेकर के जो एक विवाद चल रहा था, खासकर आप ट्विटर और इन सब का देख रहे थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि इससे भारत की जो छवि है वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही थी। लेकिन चलिए, वो एक पक्ष है। दूसरा एक और पक्ष है, अखबारों में दो तीन दिनों से लिखा जा रहा है और जबरदस्त रूप से लिखा जा रहा है, और वो ये है कि आईटी जो हमारा कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कानून है दोस्तों, उसका एक सेक्शन है 66A, याद रखिएगा 66A। इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है कि ये असंवैधानिक है, और खासकर यह जो धारा है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, यानी कि यह धारा एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन सरकार बकायदे इस धारा का प्रयोग करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उन पर मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि जो धारा समाप्त की जा चुकी है उस धारा के अंतर्गत सरकार गिरफ्तारी कैसे कर रही है। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए कि जो आईटी कानून की धारा 66A है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसे असंवैधानिक करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में जो आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो विकल्प दिए जाते हैं, वो फिर कुछ इसी तरह के होते हैं। इसीलिए मैं अपनी बात थोड़ी ज्यादा स्पष्टता से आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट खबर तो दो तीन दिन से पढ़ने में मिल रही है, और वो ये है अफगानिस्तान की स्थिति। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें लौट चुकी हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप है वो काफी हावी है, कुछ क्षेत्रों पर तो उसका बकायदे अधिकार ही है, और अमेरिकी सेना बेसिकली इन तालिबानों के प्रभुत्व को रोकने के लिए ही भेजी गई थी जो कई सालों से रह रही थी। जैसे ही अमेरिकी सेना वापस लौटी है वैसे तालिबान ने फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, धीरे धीरे उसका फैलाव बढ़ता चला जा रहा है और काफी कुछ वह काबुल के निकट पहुंच चुका है। हालांकि सरकार ने यह बात कही है कि नहीं, तालिबान काबुल पर अधिकार नहीं कर सकेंगे, दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सकेंगे, सरकार उनके सामने समर्पण नहीं करेगी। ये अफगानिस्तान की सरकार कह रही है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है उसे लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है, और चूंकि अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है, भारत के उससे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, साथ ही साथ भारत ने वहां बहुत अधिक इन्वेस्ट भी कर रखा है, इन सबको देखते हुए भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है। और केवल यही नहीं बल्कि जो तालिबान है, चूंकि वो एक यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा कट्टरवादी समूह है, संगठन है, तो भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसके लिए भी भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि तालिबानियों को बकायदे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है। कल अखबारों में यह भी छपा था कि भारत सरकार अफगानिस्तान में जो हमारे दूतावास हैं उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है, सोच रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे लिए यह एक चुनौतीपूर्ण वक्त है। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। आपको लग रहा होगा कि इस विषय का चुनाव मैंने क्यों किया। डेफिनेटली आपको सोचना भी चाहिए, आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि यह विषय इतना सरल सा है कि आप इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कल मैं जब टीवी चैनल्स पर न्यूज देख रहा था तो मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ चैनल्स ने यह लिखा हुआ आ रहा था, यहां तक कि बोलने में भी आ रहा था, समाचार रीडिंग में भी, कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, और उसमें इतने मंत्री शामिल किए गए, टोटल इतना मंत्रिमंडल की संख्या इतनी हो गई। मुझे लगा कि खासकर चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बारीकियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मुझे यहाँ उन बारीकियों से आपका परिचय कराना चाहिए। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल शब्द नहीं है, इसका इंग्लिश है कैबिनेट। कैबिनेट के बारे में हमारा संविधान चुप है। हमारे संविधान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की परिषद, बस दैट्स ऑल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। जब हम कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हों, स्टेट रैंक के मिनिस्टर हों, स्टेट रैंक के होने के बावजूद उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो, वो सब के सब उसके सदस्य हैं। जो भी मंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है। और संविधान में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, या यूं कह लीजिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री का शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट है या नहीं, मंत्रिपरिषद की बात कही गई कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे, राइट? तो फिर ये कैबिनेट कहां से आ गया? अब होता देखिए ये है कि जब मंत्रिपरिषद बना दी गई तो अब उसमें देखिए अभी भी इतने सारे मिनिस्टर हैं, एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय में कई कई मंत्री होते हैं। जैसे आप गृह मंत्री मंत्रालय ले लीजिए तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, लेकिन उनके नीचे कई राज्य मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय में भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो जो बड़े हमारे मंत्रालय हैं उसमें एक सीनियर मिनिस्टर होते हैं जिसे आप कैबिनेट मिनिस्टर कह लीजिए, और उनके नीचे फिर राज्य मंत्री होते हैं। इससे पहले उप राज्य मंत्री भी हुआ करते थे, उपमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री इन सभी से बातचीत करेंगे? अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनके प्रमुख कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री हैं, नो डाउट। लेकिन जब आप खबरें पढ़ते होंगे तो उसमें आता होगा कि कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया, मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया। इसका मतलब है कि जो निर्णय लेने का अधिकार है वो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को नहीं है। वैसे संवैधानिक रूप में अधिकार मंत्रिपरिषद को ही है, लेकिन व्यावहारिक रूप में कैबिनेट डिसीजन लेती है। तो ये कैबिनेट फिर क्या है? ये आप यूं कह लीजिए कि ये जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद के ही कुछ सदस्य कैबिनेट में रखे जाते हैं, और ये छोटा सा समूह बन जाता है, और इस छोटे से समूह को यह अधिकार तो नहीं कहना चाहिए, और यह छोटा सा समूह ही फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लेता है, सभी निर्णय लेता है। तो अब इसमें कौन सदस्य बनते हैं? दोस्तों, जितने भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, ये जो बेसिकली कैबिनेट और राज्य मंत्री है ना, ये रैंक है, इनके पद की आप कह लीजिए प्रोटोकॉल है। तो कैबिनेट मतलब टॉप रैंक के मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर डेफिनेटली कैबिनेट के मेंबर होंगे। अब बाकी बच गए राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री भी दो तरीके के होते हैं, या दो स्तर के होते हैं। कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं कि वो दे दिए जाते हैं राज्य मंत्री के रैंक के मिनिस्टर को, और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है कि आप इसे पूरी तरह से देखिए, यानी कि उस मंत्रालय का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। तो अब आप देखें कि चूंकि उसका कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो जो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री होगा वह भी कैबिनेट में शामिल हो जाते, कि अदरवाइज फिर उस मंत्रालय के बारे में प्रधानमंत्री जी को कौन बताएगा? तो वो भी मेंबर बन जाता है। तो जब उसका विषय होता है कैबिनेट में बातचीत करने के लिए, डिस्कशन के लिए, तो वो भी आते हैं मीटिंग में। लेकिन वे राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, वे कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो कैबिनेट मिनिस्टर वहां कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो कैबिनेट है वो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का आप कह लीजिए कि ग्रुप है, लेकिन यह ग्रुप इस तरीके का है कि इस ग्रुप के अंतर्गत हमारे जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है, और यही फिर निर्णय लेती है। तो यह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जब भी आप एग्जामिनेशन में आंसर लिखें, खासकर मेंस में तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों के अंतर को ध्यान में रखिएगा। अगर उसमें जरा से भी गड़बड़ी हुई तो मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब आप देखिए कि ये मंत्रिपरिषद बनी। डेफिनेटली मंत्रिपरिषद के गठन में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री ही अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। एक कल्पना करके देखिए कि एक राजा है और वो अपने मंत्रिपरिषद का गठन कर रहा है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए नेता है, प्रधानमंत्री हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, वे मंत्रिपरिषद का गठन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क होगा? दोस्तों, ये मैं आपको सोचने के लिए ये विषय दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि लोकतंत्र का मतलब और कुछ नहीं है, 5 साल में चुनाव होते हैं, वोट दे दिया जाता है और इसके बाद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, बात खत्म हो गई, लोकतंत्र हो गया। नहीं, मैं चाहूंगा कि अभी जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, इस मंत्रिपरिषद के गठन में आप लोकतांत्रिक चरित्र को ढूंढने की कोशिश करें कि क्या सच में जब प्रधानमंत्री को इस तरह के निर्णय लेने होते हैं तो वहां भी जो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, वो काम कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, और ऐसा करते ही हैं, और एक राजा अपनी इच्छा से अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है, तो फिर दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों अपनी इच्छा से बना रहे हैं, तो जिसको चाहे रखें। और यहां तक कि हमारे संविधान में है कि प्रधानमंत्री तो बाहर से भी ला सकते हैं किसी को भी, कि आ जाओ तुम मिनिस्टर बन जाओ, बस फर्क इतना ही है कि 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, और वो भी कंपलसरी नहीं है कि वो लोकसभा के ही मेंबर बने, राज्यसभा के भी मेंबर बन सकते हैं, और सरकार ऐसा कर सकती है, उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री का की तो जो इच्छा है उसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, वो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बाहर से भी किसी को ला सकते हैं। तो इन सारी स्थितियों के संदर्भ में जरा विचार करके देखिए कि फिर लोकतंत्र के मूल्य कहां काम कर रहे हैं, यहां कहां आपको डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, आपको बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस तरीके से इस पर विचार करेंगे तो आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी, विचार करने की आदत पड़ेगी, जो मेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, श्रुति सुमन बेगूसराय बिहार से और अनामिका विमल प्रयागराज से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।